Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Acharya Swami Sri Bhagavatanandaji Saraswati Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Param Premaspad Paramatma Swarup Advait Makrand में आगे श्लोक है न सुताह न प्रतिविज्ञानात् निरंशत्वात् चान्यता न चान्यता। इसका मतलब यह है कि स्वयं प्रकाश तो है ही आत्मा, किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है। जैसे अंधेरे में आपको दीपक ढूंढना हो, दीपक जल रहा है तो एक तो अंधेरा ही नहीं होगा, दीपक के दीपक से थोड़ी देखा जाएगा, तो जो दीपक खुदे दिखा देगा। इसी तरह से और कोई वस्तु होए तो दीपक से देखी जाए, टार्च जगा लो भाई, रस्सी है, सांप दिख रहा है उसमें, तो रस्सी ही है, कहीं सर्प तो नहीं है, ऐसे टार्च जगा लो। लेकिन अगर स्वयं प्रकाश दीपक रखा है तो उसके लिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं है, स्वयं टार्च को दूसरे टार्च की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से आत्मा को दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है, स्वतः ये स्वतः प्रकाशित है। तो इसलिए समझना चाहिए प्रतिविज्ञान माने होता है वही है, सैव देवदत्ता, वही देवदत्त है जो हमने जागृत में देखा था, उसी को स्वप्न में देखा, जो ब्रह्मचारी वेश में था उसी को गृहस्थ में देखा, जो वानप्रस्थ में था उसी को संन्यास में देखा, उसी को देखा। असल में बौद्ध लोग मानते हैं कि संसार है नहीं, असत है। वो उदाहरण देते हैं असदेव सदैव अग्रमासी, तो है ना छंदोपनिषद में, तो वो असद कहते हैं, असदैव अग्रमासी, पहले जड़ था, चेतन नहीं था। तो बौद्धों को काटने के लिए बताया गया ना नास्ति प्रतिविज्ञानात्, वो वही है, वही देवदत्त है। अब असद मानते हैं वो, और मजे की बात एक ये है कि जो मान्यता की है वो तो सद मानते हैं, तो भाई असद कैसे हुआ? वो कहते हैं संसार की कोई चीज होती नहीं है, ऐसे कल्पना कर ली मन से। मन से कल्पना की जाएगी तो कहीं न कहीं तो होगी ना। जैसे आपने बामी में सांप देखा है तब रस्सी में अनुमान लगाया, अगर देखा ही न हो कहीं तो कैसे रस्सी में दिखेगा भाई? क्योंकि भ्रांति कभी अधिष्ठान रहित नहीं होती है, भ्रांति जब होगी तो उसका कोई न कोई अधिष्ठान होना चाहिए। जैसे रस्सी है तब सांप है दिख रहा है, और सांप भी भिन्न भिन्न दिखता है, किसी को लंगोटी लगी दिखेगी, किसी को माला पड़ी दिखेगी, किसी को कुछ, किसी को कुछ, अलग अलग दिखेगा। तो अलग अलग दिखेगा और अलग अलग भान होगा, तो इसलिए प्रतिविज्ञान कहा गया। प्रतिविज्ञान का अर्थ ये रहा कि बौद्धों को खंडन करने के लिए बौद्ध ना आ जाए, तो इसीलिए प्रतिविज्ञान कहा कि आत्मा का वर्णन कर रहे हैं। आत्मा न स्वतः माने किसी के द्वारा खाटी नहीं जा सकती, वो स्वयं प्रकाश है, और न प्रतिविज्ञानात् वही वही है, वही है तो देखा हो किसी दृश्य हो तब न वही है। सैव देवदत्ता वही देवदत्ता है जो कल देखा था, जो जागृत में देखा तो वही स्वप्न में दिख रहा है, सुषुप्ति में तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो तो वही देवदत्त है, वही रमेश है जो हमने देखे थे पहले, चार दिन पहले, पांच दिन पहले। अरे ऐसे हो गए, ऐसे कैसे कहते हैं, ऐसे हो गए। अच्छा, प्रतिविज्ञान ना पिछान्यता, और दूसरे से किसी से प्रकाशित नहीं हो सकता। जो स्वयं प्रकाश है, जैसे बताया दीपक, दीपक की सहायता थोड़ी चाहता है। टार्च किसी दूसरे टार्च ले जाए, जरा टार्च देखें। एक सच्ची घटना आप बता रहे हैं। एक जन चश्मा लगाते थे, चश्मा रख दिया तट पर, गंगा जी नहाने चले गए। अब बोले कि चश्मा बिना चश्मा कैसे देखा है? अब चश्मा ढूंढ रहे हैं, वास्तव में चश्मा बिना कैसे चश्मा दिखा है? यही समस्या है यहां पर। आत्मा का ज्ञान कैसे हो? चेतन से होगा, आत्मा से। तो चेतन से आत्मा से ज्ञान होगा, न चान्यता इसीलिए दिया, दूसरे से किसी से नहीं होगा, चेतन से ही होगा न चान्यता। और आश्रय विनाशाद में भी विनाशा नास्ती, आश्रय के आधार के विनाश से हमारा विनाश नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। आश्रय नष्ट हो जाए, जैसे ये नष्ट हो जाएगी तो ये किताब गिर जाएगी, या इस पर सामान रखा हुआ गिर जाएगा। और जिसका आश्रय नहीं है कुछ, अनाश्रय है, उसका नाश क्या होगा? ना मेरा विनाश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अनाश्रयत्वात् हम अनाश्रय हैं, आश्रय हमारा कुछ है ही नहीं। अधिष्ठान आत्मा का क्या होगा? वही सबका अधिष्ठान है। केन उपनिषद में आया, यद वाचा अनुवृत्तम एन बाघ बुद्ध थे तदेवं ब्रह्म कस्तम विद्धि तदेवं विद्धि कस्तम नेदम तद उपास्ते। उसमें कहा कि जो वाणी से तो बोला नहीं जा सकता, लेकिन जिसकी बदौलत वाणियां बोलती हैं, जिसके होने से वाणी बोलती है, हाथ चलता है, आंख देखती है, कान सुनता है, उसी की बदौलत तो है। तो उसको कोई कैसे देखेगा, कैसे सुनेगा? इसीलिए तो कहा गया है जिसके सुनने से सब सुना जाता है, जिसके देखने से सब दिख जाता है, उसको कोई कैसे देख सकता, उसको कोई बोल नहीं सकता। एन वाचा अभिवृतम, जिससे वाणी बोलती है, जिसकी बदौलत वाणी बोलती है, अप्राप मनसा सह एकाद्वा निवर्तनते कहा, फिर कहा कि अप्राप मनसा सह, इंद्रियां चली सब खोजने परमात्मा को। बोले हम लोग लड़कियां हैं, सब कोई पुरुष होए एक तो होए, लेकिन ऐसा पुरुष होना चाहिए जो हमें न कहीं कुछ करने लगे। तो चली चली चलती चलती एक नपुंसक मिल गए। बोले आओ भैया, तुम ठीक हो, तुम हमारे साथ रह जाओ। चले वहां, अप्राप मनसा सह, मन के साथ गए, परमात्मा को खोज ही नहीं पाया। परमात्मा को जब खोज नहीं मिला, कैसे दिखाए वो? देखने वाला दिखता नहीं है, देखने वाला है वो तो दिखेगा कैसे? जो देखने वाला है, दृष्टा है, साक्षी है, कूटस्थ है, कहा गया निवासा शरणम सुहृद, वो सबका मित्र है, निवास है, शरण है, शरणम गृह रक्षत्रो, घर और रक्षक के लिए आता है, आश्रय सबका अधिष्ठान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सबका अधिष्ठान होता है, उसमें सब अध्यस्त तो होंगे, लेकिन अधिष्ठान नहीं होगा। उसका तात्पर्य यह है, समझ लेना चाहिए कि संसार का ध्यास इतना हो गया है, अनात्मा का आत्मा के साथ, आत्मा का अनात्मा के साथ, देह का आत्मा के साथ और आत्मा का देह के साथ इतना संसर्ग हो गया है, आसक्ति हो गई है, तादात्म हो गया है, लगाव हो गया है, मिलान हो गया है कि अलग अलग करने में कठिनाई पड़ती है। अभी आपसे कहा है कि देह तुम नहीं हो, तो तुमको लगेगा कि देह नहीं है तो और कहा है। अरे भाई देह तुम नहीं, देह तो है और कहा है। शरीर जब मर जाता है तो एक यात्वाही देह मिलती है, यातना देह, उसकी जान से कूटो पीटो वो बिगड़ती नहीं है, मजबूत देह होती है। वो नरक में जाती है और खोलते हुए तेल में डाल दी जाती है, कहीं चिपका दी जाती है लाल, उसमें लाल लाल आग में, और कहीं कुछ कहीं कुछ, लेकिन वो मरती गलती नहीं है, वो यात्रा देह कहलाती है। तो ब्रह्मा जी उसको दे देते हैं तुरंत, क्यों सूक्ष्म शरीर किसी न किसी में रहेगा, किसी में रहे लेकिन रहेगा तो जरूर, इसलिए सूक्ष्म शरीर किसी में रहने के लिए यात्रा दे दे देते हैं, और खूब कुटे पिटे उसे कुछ बिगड़ता नहीं है, वो यात्वाही देह कहलाती है, यात्वाही शरीर मिल जाता है, यात्रा दे बस उसे खूब कुटे पिटे कुछ नहीं बिगड़ता। तो कहना ये था कि स्वतः प्रकाश होने वाला जो आत्मा है, चेतन है, वो स्वयं प्रकाशशील होने के कारण दूसरे से प्रकाशित नहीं है। स्वतः प्रतिविज्ञानात वो वही है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह वही है। ये तो अनुभव में आए कि किसी ने देखा हो, ये वही देवदत्त है, तो देवदत्त तो वही कैसे हो सकता? जो आपने चार वर्ष देखा था वही नहीं हो सकता, चार वर्ष पहले है। तो इसलिए काल की परिधि में नहीं आता है। सजाती विजाती सुगत भेद शून्य, किसी देश में किसी काल में कि परिधि में नहीं है, वो परछिन्न नहीं है। और हम परछिन्न के साथ देह के साथ एक कर रहे हैं, देह के साथ एक मिलाए रखा है, इतना तादात्म हो गया, इतना तादात्म हो गया, जब हमसे कोई परिचय पूछता है तो झट देह का बता देते हैं, देह इतनी पढ़ी है, इतनी लिखी है, ये देश का रूप है, इसी सकल सूरत है, ऐसे बता देते हैं। लेकिन ये नहीं बताते हैं कि हम वास्तव में कौन है। आप तो हमेशा हैं, कल आया था सद्भामी, हमेशा प्रकाशशील है, हमेशा जो प्रकाश है वो स्वतः प्रतिविज्ञानात निरंशत्वात, और अवयव कोई चीज होती है, सावयव कोई चीज होए, अवयव होए, अलग अलग अंग होए, तो साकार का अवयव होता है, निराकार का तो कोई अवयव नहीं है, निरंशत्व है। निरंशत्व माने अंश रहित नहीं है, अंश रहित है, निरंशत्वात। अच्छा, न चान्यता, दूसरों से प्रकाशित नहीं है, और दूसरा सूर्य चंद्र इनसे प्रकाशित नहीं हो सकता। नियम यह है कि आंखें खुली हुए वस्तु भी सामने रखी हुए, लेकिन सूर्य की रोशनी नहीं है तो नहीं दिखाई देगा। सूर्य की रोशनी और अध्यात्म इंद्रियां और आदि बहुत विषय सामने हो, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, अद्वैत अद्भुत आदि अध्यात्म इंद्रियां हैं, अद्भुत विषय हैं, और अद्वैत मन सूर्य चंद्र देवता हैं। तो तीनों का एक दूसरे के पूरक हैं, तीनों जब चलते हैं तब मामला चल पाता है, नहीं तो एक रहा तो उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये चलने का अर्थ है। आगे बताते हैं नमे विनाशा, मेरा विनाश नहीं होता है, आश्रय विनाश से मेरा विनाश नहीं होता, आश्रय नाशात नमे नाशा, माने आश्रय जैसे रस्सी है तो नष्ट हो जाए तो भी हमारा विनाश नहीं है। दे का आश्रय है ना, दे नष्ट हो जाए तो हमारा आश्रय नहीं, जगत नष्ट हो जाता है प्रलय में तो वो नाश नष्ट हो जाए, नवे विनाशा हमारा विनाश नहीं है। जैसे लोग विदे मुक्ति वाले मानते हैं वैष्णव लोग कि देह छूट गई तब मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है। देह छूटने से तो मुक्ति जो मिलती है वो किसने देखी है, अभी अभी आनंद में रहे, आनंद लें आनंद दें, जिए जीने दें, ज्ञानार्जन करें करने दें, आनंद में रहें और आनंद में रहने दें, तब आनंद का मजा है। अब फिर किसने देखा है कि मरने पर मुक्ति होती है, इसलिए जीवन मुक्ति जिंदा रहते हुए और मौज में जीवन जिए। बल्कि हम तो कहते हैं चिर जीवन से दिव्य जीवन अच्छा। देखो शंकराचार्य जी 32 वर्ष के रहे और क्या करके गए, आज उनके ग्रंथ पढ़ना मुश्किल है। हम लोग समझ बूझ के करते हैं, समझदार बनते हैं, लेकिन उसमें समझदारी नहीं चलती है, इतना कठिन कलिष्ट। ओ समय पैदल यात्रा करते थे, अब आप सोचो अंदाज लगाओ कैसे गए होंगे चारों जगह, और यात्रा कैसे करनी होती, कितनी कड़ी। अरे अभी अब चतुर्मासा करते थे महात्मा लोग, इसीलिए करते थे, नाला नाली बढ़ जाते थे वर्षा में, तो चलो एक जगह रहेंगे, अब तो नहीं जाना जाने जाएगा, अब चल नहीं पाएंगे, नाले बढ़ जाएंगे, नालियां बढ़ जाएंगी, नदियां बढ़ जाएंगी, तो अब नदियां चूंकि गाड़ी से चले जाते हैं और नदियों के पुल भी बन गए हैं। अब पहले में अब विकास तो है, ये तो मानना पड़ेगा, विकास तो हुआ है जब से स्वतंत्र भारत हुआ। अब सबके दरवाजे के ट्रैक्टर खड़ा है, बिना ट्रैक्टर खेती नहीं होती। अब देखो पहले खरियान होते थे, अब मशीन में वही खेत में ही काट लेते हैं, वही भूसा उड़ा दिया अपना रह गया। तो विकास तो हुआ है लेकिन प्रकाश पूर्वक नहीं विकास हुआ। प्रकाश ये है न स्वतः न प्रतिविज्ञानात न चान्यता, किसी दूसरे से प्रकाश नहीं मिल सकता, प्रकाश पूर्वक विकास होना चाहिए था। विकास तो हुआ है, प्रकाश पूर्वक इसलिए नहीं जैसे टीवी बनाई, अब टीवी भी ये नहीं सोचा कि इसका कोई दुरुपयोग करेगा तो उल्टा परिणाम होगा। मोबाइल है, मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, सदुपयोग करे तब ना, और दुरुपयोग करेगा तो बुरी खराब चीज है, उससे कोई खराब नहीं। क्या वो बताया था कि कनपट्टी फट गई और किसी बताया था आवाज आई, वो ज्यादा यूज करने पर प्रयोग करने पर दुरुपयोग करने पर हानि होती है, होगी हानि होगी। तो इसलिए ये स्वयं प्रकाश है, प्रतिज्ञानात्मा ने न जानने लायक है, दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं है, जान्यता दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकता। और नाश रस्सी के नाश होने से सर्प का नाश नहीं होता, बल्कि सर्प के नाश से होने से रस्सी दिखेगी, लेकिन जब ज्ञान हो जाएगा टार्च से देख लोगे तब थोड़ी सर्प दिखता रहेगा, सर्प तो तब तक दिखेगा जब तक आप रस्सी का ज्ञान नहीं है, तब तक सर्प ब्रह्म लगेगा। सो भी ब्रह्म है, ब्रह्म 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 अपने कमरे से निकल के जैसे मॉर्निंग वॉक करने जाते हो ना, ऐसे जब मनीराम बाहर चले जाते हैं तो उस समय वो जगह खाली रहती है, और जगह खाली रहती तो बीस शैतान आ जाते हैं। इस तब आप कहते हो मन नहीं लगता है, ये शिकायत करने लगते हो। वास्तव में तो आशय के विनाश से मेरा विनाश नहीं हो सकता। आशय कभी भी टूट जाए मैं थोड़ी टूट पड़ जाऊंगा। आशय ये है जैसे सहारा, थोड़ा सहारा है, आशय है, अधिष्ठान है, तो इससे टूट जाने से ये वस्तुएं गिर जाएंगी। फलवृत्ति वाली जितनी वस्तुएं सब गिर जाएंगी, लेकिन वृत्ति व्याप्ति थोड़ी गिरेगी, आत्मा थोड़ी नष्ट हो गया है। क्यों? अनाश्रित्वाद, उसका कोई आशय ही नहीं है। तो उसका आशय नहीं है तो कैसा है? बोले न श्लेष न शोष न प्लोष। वो कैसा है? बोले न तो वो वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है, न प्लोष माने दाह, अग्नि के द्वारा दाह नहीं किया जा सकता। अरे न क्ले न विक्लेद, विक्लेद पानी के द्वारा वैसा नहीं किया जा सकता, जो कीचड़ कर दें पानी के बगैर, पानी के पानी से वो कुछ नहीं, न वो है न पाव को न वो क्या है, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दाज पाव का न चैनम क्ले दें त्यापो न शोषित मार्गता। उसी का आगा है, न शोष न प्लोष न विक्लेन न छेद, छेदन वेदन भी नहीं हो शास्त्र ही, किसी शस्त्र से छेदन वेदन नहीं हो सकता। साकार चीज का होगा छेदन वेदन, निरंशत्वात, अभी आप सुन चुके, निरवयव का कैसे खंडन होगा? निरवयव पदार्थ है उसका, ये कैसे कहा जाए कि ये ऐसे खंडन टूट जाएगा? टूट तो वो जाएगा जो अवयव होगा, और जिसके अवयव नहीं है वो क्या टूटेगा? इसलिए उसके विचार नहीं करना चाहिए, ये विचार ये करना चाहिए कि भाई जब अंश नहीं है उसमें, निरंश है, अवयव नहीं है, तो क्या टूटेगा? हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, मूर्तियों को खंडन हो जाती है, मूर्तियां टूट जाती हैं, हाथ से टूट गया तो उसको सिरा देते हैं, दूसरी मूर्ति लगा देते हैं, लेकिन ये तो है नहीं अवयव वाला, तो दूसरा आत्मा है नहीं तो किसको लगाओगे? वो तो अद्वितीय है, अद्वितीय, इसलिए कह दिया कि कहीं एक एक कह देते तो एक और आ जाता तो ग्यारह हो जाते, और ये अद्वितीय है। भागवतकार कहते हैं दूसरा स्कंद जरा कठिन है तो उसको नहीं पढ़ते हैं, तो एक सज्जन कह रहे थे ये अद्वितीय पंडित हैं। हाँ, अद्वितीय इसलिए कहा कि दूसरा स्कंद पढ़ना नहीं है, वो कठिन है थोड़ा, तो अद्वितीय हो गए। तो ऐसा ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए। कहते हैं न प्लोस, न दा अग्नि जला सकती है, न पानी क्लिन कर सकता है, न शस्त्र कोई काट सकता है। क्यों? अवयव वाले को काटता है, अवयव वाले को पानी से क्लिन हो जाएगा, वायु सुखा देगी। नभसो मम आकाश, हम तो आकाश रूप हैं, चिदाकाश में कभी कोई काट नहीं सकता, कभी कोई जला नहीं सकता, कभी कोई गीला नहीं कर सकता, वो तो ज्यों का त्यों है। नभसो मम आकाश रूप सत्यप्यगी, सचमुच में अग्नि अग्नि से दाह होता है, जैसे गर्म जल रख दो अब गर्म जल है, इतना गर्म हो जाए कि उंगली पे डालो तो जल जाए उंगली, उंगली से देखने लगो कि कितना गर्म है देखो तो उंगली जल जाएगी, इतना गर्म क्यों कर लिया, और चिल्लाने लगते अरे राम राम इतना गर्म क्यों कर दिया। गर्म तो दूसरे का है, आग आग का लक्षण है, जल का लक्षण थोड़ी है, थोड़ी देर रख दो ठंडा हो जाएगा, अपने स्वभाव में आ जाए। देखो कितनी बढ़िया बात, जो जैसे आप गुस्सा हो गए, गुस्सा कितनी देर रहोगे, अरे मिनट दो मिनट क्रोध आया और चला गया, लेकिन क्षमा हमेशा रहेगी। हमेशा रहने वाले सद्गुण होते हैं और दोष विकार थोड़ी देर रहते हैं, देर आएंगे तब तो धुआंधार आएंगे। जैसे क्रोध आया तो एक एक कंठ को ठार न दीना तो कम महा को कोप कर कीना। परशुराम जी इतने गुस्सा में थे कि क्रोध से अभिभूत हुई उनकी बुद्धि, ये न समझ पाई कि परमात्मा है, इसलिए पश्चाताप किया बाद में। सामने लक्ष्मण जी हजार खोपड़ी के खड़े हैं और समझा रहे हैं, लेकिन अक्रोध से अभिभूत बुद्धि थी उनकी, समझ नहीं पाए। जैसे काम से नारद जी अभिभूत हो गए थे। ये उदाहरण इसलिए दिए गए हैं जिससे आप सतर्क हो जाएं। इतने बड़े व्यास, जैमिनी ऋषि की कथा आती है, जैमिनी ऋषि ने एक दिन व्यास जी ने कहा, जैमिनी ग्रंथ भी है, और जैमिनी ने कहा, व्यास जी ने कहा कि बेटा विद्वांस विकर्षति, विद्वानों को भी बलवान इंद्रिय ग्राम हो, विद्वांस विकर्षति, इंद्रिय ग्राम इतना समूह कठिन है कि विद्वानों को, बड़े बड़े विद्वानों को खींच लेती है, इसलिए इनका मन का भरोसा न करना कभी। तो जैमिन के सब कम समझ में आया, बोले गुरु जी कहते जरूर हैं लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता, कब विद्वांस को वहां कहते मूर्ख,